हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 1। कृपया इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण कीजिए ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स पदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवी वेदी साङ्गपाठकमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवायतस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टजायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। परम सौभाग्य है कि आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त श्री नारद, जो कि अगर देखा जाए तो जितने भी अब शिष्य बनते हैं ना, वो नारद मुनि किसी न किसी तरह, जो बड़े बड़े भक्त हैं वो किसी न किसी तरह से नारद जी के संपर्क में आए हैं, जैसे दुरु महाराज, प्रहलाद महाराज और स्वयं समस्त वेदों के संकलन करता भगवान के अवतार वेद व्यास जी, तो ये सब श्री नारद। और अभी भगवान की कथा स्टार्ट करने से पहले ही व्यास देव नारद मुनि के प्रास्पत्य के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि जहाँ भगवान के भक्त की चर्चा होती है ना, तो भगवान वहाँ पर स्वतः आ जाते हैं। तो आज हम इस अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं और पहला श्लोक व्यास देव द्वारा उच्चरित है और व्यास देव कहते हैं, प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 1, व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृत्तः कुलपति सूतं बहवृच्च शौनकौ ब्रवीत् इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृदः कुलपति सूतं बहवृच्च शौनकौ ब्रवीत् इति ब्रुवाणं संस्तुय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपति सूतं बहवृच्च शौनकौ ब्रवीत् इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृदः कुलपतिः सूतं बहवृच्च शौनकौ ब्रवीत् इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृदः कुलपतिः सूतं बहवृच्च शौनकौ ब्रवीत् इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृच्च शौनकौ ब्रवीत् इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृच्चः शौनको ब्रवीत्। शब्दों का अर्थ, व्यास उवाच अर्थात व्यास देव ने कहा, इति ब्रुवाणम इति मना इस प्रकार, ब्रुवाणम अर्थात बोलते हुए, संस्तुय बधाई देकर, मुनि नाम बड़े बड़े साधुओं में, दीर्घ अर्थात दीर्घकालीन, सत्रिणाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले, वृद्धः वयोवृद्ध, कुलपति अर्थात सभा का अध्यक्ष, सूतम सूत गोस्वामी को, बहवृच्च अर्थात विद्वान, शौनको शौनक ने अब्रवीत संबोधित किया। अनुवाद, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध नेता शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं या उसकी प्रशस्ति की जाती है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का नेता अर्थात सभापति तथा वयोवृद्ध व्यक्ति होना चाहिए। उसे परम विद्वान होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थीं। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसका अनुभव किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववृत्ति आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववृत्ति आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। मूल पाठ के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींच तान कर उससे कोई अस्पष्ट अर्थ नहीं निकालना चाहिए। अभी तो श्रोताओं को समझाने के लिए उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, यही अनुभूति है। सभा के नेता शौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथादीतम यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे वक्ता को कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवतम के ऐसे मानक वाचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजन के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ श्रम है। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। अत्यंत ही सुंदर श्लोक व्यासी उच्चारण कर रहे हैं। वे कह रहे हैं इति ब्रुवाणम संस्तूय। इति व्यास उवाच अर्थात व्यास देव ने कहा इति ब्रुवाणम, इस प्रकार बोलते हुए। इस प्रकार किस प्रकार, यानी जैसे ही उन्होंने श्लोक नंबर 44 चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 44 उच्चारण किया, क्या बोला? तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशीर भूरि तेजस अहम चाद्यतमं तत्र निविष्टस्तद् अनुग्रहात् सोहं वशावयिष्याम यथादीतं यथामति। कि मैंने उस श्रीमद् भागवत महापुराण को जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित को सुनाया था, उस समय मैंने निविष्टस्तत् अनुग्रहात् उनकी कृपा से बहुत ही एकाग्रचित्त होकर उसको सुना था। सोहम व श्रावयिष्याम, मैं वही वाला भागवतम जो मैंने वहां से सुना है वो यथादीतम यथामति, जैसा वहां से सुना है वैसे का वैसा मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, और जैसा मैंने सीखा है और जैसा मैंने अनुभव किया है उसके ऐसा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो इति ब्रुणाम ब्रुवाणम, यानी ऐसा बोल जैसे उन्होंने बोला तब मुनीनाम दीर्घ सत्रिणाम। दीर्घ सत्रिणाम मतलब वहां पर बहुत बहुत बड़ा समय के लिए जो यज्ञ करने के लिए सारे मुनि वहां पर जमा हुए थे, उनमें से वृद्ध कुलपति सूतम। वृद्ध यानी कि उनमें जो बहुत बड़े थे, सबसे ज्यादा वयोवृद्ध थे, सभा के जो अध्यक्ष थे सूत गोस्वामी को, बहुवृच्छ जो बहुत विद्वान थे उनका नाम था शौनक, शौनक मुनि, उन्होंने ऐसा ऐसे कहकर संबोधित किया, यानी उन्होंने उनको ऐसे कहा। अब यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे मुनि बैठे हुए थे, लेकिन जब कोई वक्ता बात करता है तो जो ग्रुप होता है ना उसमें जो वयोवृद्ध हो, जो आयु में बड़ा हो, जो ज्ञान में बड़ा हो, वही बहुवृच्छ यानी विद्वान भी है, वृद्ध यानी बड़ा भी है, और वो क्या है, नेता है, समझो एक तरह से अध्यक्ष, कुलपति, सभा का अध्यक्ष है। उन्होंने फिर सबने एक साथ, पहले क्या हुआ था यानी हम लोगों ने पढ़ा था, सब ऋषयो उचुहु, सारे ऋषियों ने एक साथ बोला था, लेकिन जब अब वक्ता बना के उसको बिठा दिया तो सारे एक साथ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनमें जो सबसे विद्वान है और जो सबसे वृद्ध है उन शौनक मुनि को आगे किया और फिर अब वो बात करेंगे। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि जब भी वक्ता को संबोधित बधाइयां दी जाती हैं या संबोधित किया जाता है, उनको प्रशंसा की जाती है, तो जो करने वाला है सभा में जो करेगा उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए क्या, कि वो विद्वान होना चाहिए, वयोवृद्ध होना चाहिए, उसे परम मतलब पता होना चाहिए कि किस तरह से मुझे बात करनी है। ऐसे ही कोई उठकर वक्ता के साथ और उसको बधाइयां देने के लिए या उसको है ना प्रशंसा करने के लिए कोई किसी ऐसे को चुनना चाहिए जो वाकई में क्वालिफाइड हो। इसीलिए जो जितने सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे उन्होंने शौनक ऋषि को इस चीज के लिए चुना था क्योंकि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज थी। और जब सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की थी ना कि मैं वैसा ही आपको बताऊंगा, इसे क्या कहा उन्होंने, यथादीतम यथामति, जैसा मैंने उनसे सुना है, मैंने समझा है, वैसा का वैसा जैसा अनुभव किया है मैं आपको सुनाऊंगा। तो फिर शौनक आदि ने उन्हें, शौनक ऋषि ने उनको बधाइयां दी और खड़े होकर उन्हें कहने लगे। तो आत्म अनुभव का यही अर्थ नहीं है कि कुछ लोग है ना, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें सावधान कर रहे हैं कि अपनी इच्छा और अपनी मति का वक्ता कर, जो वक्ता होते हैं ना वो अपने गर्व से कि मैंने ये मैं बता रहा हूँ, मुझ मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं देखो कोई और इस तरह की कोई जो ज्ञान किसी को बताता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ है वो गुरु और गौरंग की कृपा से प्राप्त होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय के अंदर जितना दिव्य ज्ञान जो है वो तभी प्रकाशित होता है जब हम गुरु और गौरंग की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया कि पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करे, उससे पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका उल्लंघन कर दे और उन्होंने जो बताया वैसा एज इट इज नहीं बताया, बल्कि आजकल क्या करते हैं कुछ लोग वक्ता बनते हैं और जैसा ऑडियंस चाहती है ना, ऑडियंस को प्रसन्न करने के लिए अपने मनमाने ढंग से शास्त्र को बताते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वक्ता को इतना बुद्धिमान होना चाहिए, उसके पास इतना उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वो किसी भी विषय पर किसी भी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके, यानी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मूल पाठ के मूल उद्देश्य का पालन होना जरूरी है। कुछ लोग ऐसा होता है खींच तान कर कोई भी चीज को खींचते हैं, बस भौतिक बात आ गई तो उसको इतना खींचेंगे उसके अंदर गाने डालेंगे, फिल्मों की स्टोरीज डालेंगे, और फिर वास्तव में जो श्लोक है वो सुनने वाले के माइंड में वो श्लोक तो याद ही नहीं रहेगा, व्यास देव के जो शब्द हैं वो तो पता ही नहीं होंगे, भागवतम का जो शब्द जिसके कारण ये बात की जा रही है वो श्लोक भी पता नहीं होगा, मूल पाठ भी पता नहीं होगा, बस जो उदाहरण दे रहे हैं ना, उदाहरणों में उदाहरण आते जाएंगे और फिर भौतिकता इतनी भरी हुई होगी और ऑडियंस तो उससे खुश हो रही होगी और समझ में आएगा नहीं, बोलेंगे भाई आज कौन से श्लोक पे बात हुई, तो ना श्लोक पता होगा और ना ही श्लोक का अर्थ पता होगा। तो यहाँ पर श्लोक प्रभुपाद जी ने इस तरह से करने से मना किया कि मूल पाठ के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए, खींच तान कर उससे कोई अस्पष्ट अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन उदाहरण ऐसे दो कि लगे कि वास्तविक श्लोक को जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए उदाहरण दिया जाए। खाली उदाहरण ही प्रमोट हो रहा है और श्लोक पता ही नहीं चल रहा है, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जैसे श्री प्रभुपाद जी ने हमें जिस तरह से समझाया है उसी को अब जैसे श्रोताओं की, क्योंकि क्वालिटीज होती हैं, छोटे होते कभी बड़े होते कभी, जैसे भक्त की क्वालिटीज होते हैं, कुछ कनिष्ठ होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ उत्तम अधिकारी होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से जो वक्ता है उनको ना एग्जाम्पल्स देने चाहिए, लेकिन मूल पार्ट मूल उद्देश्य जो है उसको हमेशा माइंड में रख के उसी के विषय से हमें बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर जब सूत गोस्वामी ने यथा रीतम यथा मति कहा, तो फिर जो श्रोणिक ऋषि थे जो कि वयोवृद्ध थे वो खड़े हुए, उन्होंने क्या किया, इति ब्रुवाणम संस्तूय, बधाई दी, उनको धन्यवाद कहा, उनको कहा वाकई में आप ही यू आर द राइट कैंडिडेट, आप जो है ना वही योग्य हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम के विषय में बताएं। क्यों योग्य हैं? सबसे पहली क्वालिटी क्या है कि आपने परंपरा से आए हुए, मतलब परंपरा से सुना है, एवं परंपरा प्राप्तम, आपने जो परंपरा से सुना है तो आप जब बोलोगे तो वो एज इट इज जब बोलोगे, आप जब कह रहे हो यथारीतम मैंने बहुत ही उसको एकाग्र चित्त से सुना है, तो वास्तव में वक्ता को, कोई अच्छा वक्ता होता है वो कब बन सकता है, जब वो बहुत अच्छा श्रोता हो। यदि कोई अच्छा श्रोता नहीं है तो कभी भी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर ये क्वालिटी है सूत गोस्वामी की कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना था, ऐसे ही कोई मनगढ़ंत व्यक्ति जो अपने ना शास्त्र को अध्ययन करके, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बुकिश नॉलेज विदाउट रियलाइजेशन इज यूजलेस, खाली आप शास्त्र के विषय में बता रहे हो लेकिन आपका कोई रियलाइजेशन नहीं है, आपने कभी किसी सतगुरु से श्रवण नहीं किया है, तब तक आप वो केवल व्यर्थ। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने साफ साफ कहा कि बाह्य प्रयोजन के लिए भागवतम का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ है। यदि प्रयोजन हमारा कृष्ण प्राप्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं है, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयोजन नहीं है, हम केवल बाह्य प्रयोजन के लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करते हैं या फिर उसको अध्ययन करते हैं या फिर उसको वाचते हैं यानी बताते हैं, तो ये केवल व्यर्थ का श्रम है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो, यानी जैसा मूल आचार्य ने, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो शब्दों को देखना है हमें कि शब्द क्या कह रहे हैं जो वेद व्यास जी ने लिखे हैं और श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, जो वक्ता है उसको ट्रांसपेरेंट मीडिया होना चाहिए, एज इट इज आपको बताए, तो जो वास्तविक ये प्रतिनिधित्व ना करता हो, मूल आचार्य को एज इट इज नहीं बता, वास्तव में जिस आसन पर बैठकर प्रवचन किया जाता है उस आसन पर वक्ता का अधिकार नहीं होता है, इसलिए उसको कहा जाता है व्यास आसन, अर्थात ये व्यास जी का आसन है जो व्यास देव के शब्दों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उसे व्यास आसन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो कुछ लोग कहते भाई हमें तो शब्द पढ़ने नहीं आते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़ने नहीं आते हैं, तो फिर हम लोग ऐसे ही बता देते हैं जो हमें समझ में आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई वक्ता बनता है, जब कोई पढ़ा मतलब बताता है, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको तैयारी करनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसको शब्दों को समझने का, उसकी गहराई को समझने का प्रयास करना चाहिए। बाकी कृष्ण और गुरु महाराज सदैव साथ देते हैं, और हमें गुरु और कृष्ण से सदैव याचना करनी चाहिए कि आप है ना हमारा साथ दीजिएगा। भले हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि और कोई है ना इस जिम्मेदारी को नहीं उठा रहा है, तो आप मुझे शक्ति दीजिएगा। प्योरिटी आपके अंदर हो, सिंसियरिटी आपके अंदर हो, और आप उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। उत्साह होना चाहिए, सीखने का शौक होना चाहिए, सिखाने का होना चाहिए, प्योरिटी के साथ। क्या प्योरिटी होनी चाहिए? एकदम सिंसियर। ये जो भी कर रहे हैं केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, और जितनी आपके अंदर योग्यता है उसी योग्यता। ऐसा नहीं है कि बस आ जाओ बैठ जाओ व्यास आसन पर, जो आता है आप बोल के चले जाओ। नहीं, हमें जरूर पहले श्रवण करना होता है, सीखना होता है, उसके बाद है ना बताना होता है। जो श्री प्रभुपाद जी ने भी बताया है, उसको एज इट इज बताने के लिए भी तो थोड़ी बुद्धि चाहिए होती है ना, उसको समझाना कि श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, वरना तो सब लोग अपना अपना पढ़ ले। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जितनी सिंसियरिटी के साथ, जितनी प्योरिटी के साथ, जितने उत्साह के साथ और जितनी निष्ठा के साथ हम भगवान और गुरु की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे, गुरु और गौरंग हमें उतना ही बल, उतनी ही शक्ति, उतना ही आशीर्वाद प्रोवाइड करेंगे, और हम अच्छे से उस कार्य को करने का कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहली क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हमारे अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, और हम वाकई में ये सोचकर कार्य करें कि ये कार्य केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने का एक माध्यम है। ये गर्व से नहीं कि मैं अपनी बुद्धि यूज करके मैं इसको ऐसे गोल घुमाऊंगा, ऐसे बताऊंगा, ऐसे ड्रामेटिक अंदाज में बताऊंगा कि सब लोग मेरी वाह वाह करेंगे, ये सोचकर अगर कोई भागवतम का अध्ययन कर रहा है या कोई बता रहा है, तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं वक्ता और श्रोता दोनों के लिए ही व्यर्थ है। आगे श्लोक पढ़ेंगे। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुक। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुक। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुक। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुक। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुक। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुक। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को भगवान कहकर संबोधित किया गया। तो क्या सुखदेव गोस्वामी भगवान है? वास्तव में भगवान का मतलब ये भी होता है कि कोई परम शक्तिशाली हो, यानी कि जो भगवान के विषय में बताने का की योग्यता रखता हो। जैसे अक्सर नारद मुनि को भी भगवान कहा जाता है, शिव जी को भगवान कहा जाता है। वास्तविक भगवान का अर्थ होता है जो समस्त ऐश्वर्यों का मालिक हो, है ना। जितने ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश शिष्य ज्ञान वैराग्य एव शरणाम भग इति गण, जो इन सबको भग करता हो। यानी वान का मतलब होता है जो मालिक हो, भग मतलब ऐश्वर्य। तो वास्तव में जो भगवान को जानने वाला है, उसको भी कभी इज्जत से या फिर ना उसकी प्रशंसा करते वक्त, उसके सम्मान करते हुए उसको भगवान कहा जाता है। और शौनक ऋषि आज कह रहे हैं, सूत सूत महाभाग, सूत सूत अर्थात प्रेम से कह रहे उनको, हे सूत गोस्वामी वदनो वदतांवर, यानी इससे वो अपनी उत्कंठा को जाहिर कर रहे हैं, अपने भागवत महापुराण को श्रवण करने की लालसा को जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी के हृदय के अंदर इच्छा नहीं होगी ना, लालसा नहीं होगी, तब तक उसको कभी भी भगवान के इस विषय में श्रवण करने में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। यदि लालसा नहीं है, बस आए हैं, एक कोई कोई लोग बस एज अ रूटीन भागवतम को श्रवण करते हैं, उसमें कोई इंटरनली उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, वास्तव में लालसा नहीं होती है। तो यहाँ पर इस लालसा को प्रकट करते हुए शौनक ऋषि कह रहे हैं, सूत सूत महाभाग महाभाग, आप परम भाग्यशाली हो, आपके ऊपर भगवान ने कितनी कृपा की कि आपने साक्षात शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से ये पवित्र लीलाएं सुनी हैं। और वदनो वदतांवर, वदनो अर्थात हमसे भी वही कहिए, वद माना बोलिए, वदताम बोलने वालों में से वर उदाहरणीय, हम पर भगवान की अति कृपा हुई है, अनुकंपा हुई है कि आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि आप इस भागवतम महापुराण को बोलने के योग्य हैं। तो कथाम भागवतीम पुण्याम, कथाम का मतलब होता है कथा के संदेश को, भागवतीम भागवत की, पुण्याम पवित्र, ये श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो अत्यंत ही पवित्र है और आप इस योग्य हैं कि उसे बता सकते हैं। जैसा यदाह भगवान शुक, यदाह यानी जो कहा भगवान यानी परम शक्तिशाली शुक शुकदेव गोस्वामी ने, क्योंकि आपने उनसे डायरेक्ट से सुना है तो आप इस लायक हैं, आप आपके अंदर इतना पावर है कि आप मुझे हमें वैसा ही सुना सकते हो, तो कृपा करके आज आप हमें वही कथा वही श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाइए जो कि आपने भगवान शुकदेव गोस्वामी से सुनी है। अनुवाद, शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी आप उन सबों में जो बोल तथा सुना सकते हैं सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहिए जिसे महान तथा शक्तिशाली ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया था, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने उस समय सूत गोस्वामी को ये आशीर्वाद दिया था कि आगे इस एतसूत, आगे हम बारहवें सिकंद में पढ़ेंगे कि ये जो सूत गोस्वामी बैठे हुए हैं वो आगे इस कथा का प्रवचन करेंगे गंगा के तट पर, जब यहाँ पर नैमिषारण्य के जगह पर जहाँ पर सारे ऋषि जमा हो जाएंगे वहां पर सूत गोस्वामी इस कथा को का प्रवचन करेंगे। तो आज शौनक ऋषि उनको कह रहे हैं कि क्योंकि आप इन सब में से ऐसे हो कि आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो, आपको आशीर्वाद मिला है, और जैसे हमने पहले भी सुना था कि सूत गोस्वामी जो कि है ना बलदेव जी की कृपा प्राप्त किए हुए थे और उन्होंने बलदेव जी ने इनको ये आशीर्वाद दिया था कि आप प्रवचन करोगे, आप कथा वक्ता बनोगे और कथा बताओगे सबको। ये सब पहले सारे ऋषियों ने उनको बताया था ना, पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 1.1.7 में पढ़ा था, यानी वेद वेदाम श्रेष्ठ भगवान बादरायण अन्य च मुनय सूत परावर विदो विदु। ये सूत गोस्वामी आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांति होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों से को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं, यानी कि सारे वेद व्यास जी के ज्ञान को भी आप जानते हो, अन्य मुनियों के ज्ञान को भी आप जानते हो। और श्लोक नंबर 1 में बताया था, वेद तत्त्वम सौम तत्सर्वम तत्त्वतत्त्वत् अनुग्रहात् ब्रूयसि नद्यस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। क्योंकि आप विनीत हैं, आपके अंदर विनम्रता है और आपके गुरुओं ने आपको एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताइए जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो पहले ये बात बता चुके हैं कि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान था और जब सभा में सब लोग बैठे होते हैं तो जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है उसी को वक्ता बनाया जाता है और फिर उनसे सुना जाता है, क्योंकि बहुत सारे परंपरा से आए हुए सारे जितने भी गुरु होते हैं उनका आशीर्वाद होता है उनके पास और उनका अपना ज्ञान होता है। उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत लगन से, एकाग्रचित्त से ये सब सीखा होता है। तो आज शौनिक ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं, जो कुछ आपने शुकदेव गोस्वामी से सुना है कृपा करके आप वो हमें बताइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सुत गोस्वामी को दो बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद भागवतम के पाठ को सुनने के उत्सुक थे। प्रभुपाद जी बोलते उनको इतनी खुशी हो रही थी कि अब वो वही कथा सुनने वाले हैं जो कि सूत गोस्वामी ने साक्षात शुकदेव गोस्वामी से सुनी थी। तो उनको इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि वो अपने आप पर जैसे अंकुर नहीं लगा पा रहे हैं और बाबा बोल रहे सूत सूत महाभाग आप हमें वही वाली सुनाओ, हम सुनना चाह रहे हैं। और आगे कहते श्री प्रभुपाद जी, वे किसी ऐसे नकली गुरु से नहीं सुनना चाहते थे जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करे। सामान्यतया तथाकथित भागवत कथा वाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी जो परम पुरुष की निजी दिव्य लीलाओं के अंदर नहीं जा पाते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर दो टाइप के वाचकों के विषय में बताते हैं। पहले तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वो नकली वाचक होते हैं जिनका भागवतम श्रवण भागवतम की व्याख्या करने में अपना स्वार्थ होता है। स्वार्थ मना कि वो किसी तरह से ये चाहते हैं कि मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, लोगों में मेरी पब्लिसिटी हो कि मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं कितना अच्छा वक्ता हूँ। तो वो जो ऐसा सोचता है वो कभी भी आपको वास्तविक भागवतम का लक्ष्य क्या है, भागवतम पढ़ने का लक्ष्य क्या है कि आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो। और ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने स्वार्थ के लिए भागवतम पढ़ रहा है वो कभी भी आपको वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। और उसके अतिरिक्त श्री प्रभुपाद ने दो तरह के कथा वाचक बताए, एक तो पेशेवर वाचक हैं जो कि कथा भागवत कथा करके धन अर्जित करना चाहते हैं, और दूसरे निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी भगवान की लीलाओं के विषय में समझ नहीं पाते हैं और वो किसी न किसी प्रकार से क्या करते हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेष मत को समर्थन करते हैं। वो शास्त्र को बताएंगे, आपको भागवतम भी बताएंगे और किसी तरह से बता देंगे कि ये भगवान ने, ये जब कृष्ण आए थे उन्होंने किया था, लेकिन वास्तव में भगवान कौन है, निराकार ब्रह्म है, वो कुछ नहीं करता है, ये तो बस ऐसे किया था। पता नहीं कैसे बताते होंगे भगवान की लीलाओं को निराकार समझ के। मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं वो निराकारवादी कैसे हो सकते हैं। एक एक शब्द में भगवान के, एक एक श्लोक में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव मुझ से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत मेरे अंदर पिरोया हुआ है। तो भगवान को कैसे, भगवान के अस्तित्व को कैसे निकाल देते होंगे? लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ निर्विशेषवादी ऐसे होते हैं जो वास्तविक गुह्यतम अंश को गलत व्याख्या करके बता देते हैं, और पेशावर लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट से, क्योंकि जो श्रोता होते हैं उनका क्या होता है कि वो एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो फिर वो भी है ना दशम सिकंद के विषय में बता देते हैं, और दशम सिकंद के अंदर जो भगवान की गुह्यतम लीलाएं हैं उनकी व्याख्या करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो श्रोता हैं उनके मन मलिन हो जाते हैं और वो मन के अंदर भगवान की इन लीलाओं के प्रति अपराध कर बैठते हैं। तो प्योरिटी तो मिलती नहीं है, उल्टा और भी नीचे गिरते हैं। और श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि को सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। कि जो लिखा हुआ है सुखदेव गोस्वामी ने, जो शब्दों को बोला है व्यासदेव ने, और जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने इसको समझाया है, तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल जो लोग सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि को सुनने को तैयार हैं। कुछ लोग है ना तैयार नहीं होते, वो बोलते नहीं हमें स्टोरी सुनाओ ना, अभी ये यहाँ पर आप कब से बता रहे हो, इसमें कोई स्टोरी अभी तक आई नहीं। लेकिन जो इस तरह से वो एज टू श्रवण करना पसंद नहीं करते हैं, तैयार नहीं है इसके लिए, वो श्रीमद् भागवतम महापुराण को सुनने का अधिकार भी नहीं रखते। तो श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि को सुनने को तैयार है, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार है, वही केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की इस प्रामाणिक चर्चा को श्रवण करने के अधिकारी हैं। वरना तो बताना ही नहीं चाहिए। जब तक आप इस योग्य नहीं हो जाते हो कि आप सुखदेव गोस्वामी के शब्दों को एज इट इज ग्रहण करो, या उनके प्रतिनिधि के शब्दों को सुनने के लिए तैयार जब तक नहीं होते हो, तब तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण को स्पर्श नहीं कर सकते। तब तक क्या करना है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी है। श्रीमद् भगवद गीता भी एज इट इज पढ़नी है, यथारूप में जैसे हम पढ़ते हैं शब्दों को समझ कर। जब तक श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ते रहना चाहिए, जब तक हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के लिए सीरियस नहीं हो जाते हैं। आगे हम श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनिः। यहाँ पर शौनक मुनि तीन चीजें पूछ रहे हैं। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, कस्मिन् का मतलब होता है किस युगे अर्थात युग में प्रारंभ हुआ। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् यानी ये जो श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा है वो किस युग में प्रवृत्ति अर्थात प्रारंभ हुई थी। प्रवृत्तेयम् इस, और स्थाने वा वो कौन सी जगह थी, स्थान कौन सा था, वो कौन सी प्लेस पर ये एना बताई गई थी। केन हेतुना, केन हेतुना मतलब किस प्रयोजन, किस कारण से, वजह क्या थी कि ना सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को ये कथा बतानी पड़ी। वो युग कौन सा था, वो स्थान कौन सा था, वो कारण क्या था कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को यह कथा सुनाई। कुत संचोदित कृष्ण, कुत मतलब कहां से संचोदित प्रेरणा पाई, किसने उनको प्रेरणा दी। कृष्ण, कृष्ण यहाँ पर द्वैपायन व्यास थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था वेद व्यास जी का, तो यहाँ पर शौनक मुनि उनको कृष्ण कहकर संबोधित कर रहे हैं। कृतवान अर्थात संकलन किया संहिताम वैदिक साहित्य को मुनि, यानी कि जो शौनक आदि शौनक ऋषि हैं वो पूछ रहे हैं कि द्वैपायन जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को बताया, लेकिन स्वयं वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से पाई थी। सारे ग्रंथ जब उन्होंने लिख लिए थे फिर उनको क्या ऐसा लगा कि मुझे ना ये वाला ग्रंथ भी लिखना चाहिए, और उन्होंने किस तरह से प्रेरणा पाई, यानी कि क्या क्या पूछा है। कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, कौन से युग में इसका आरंभ हुआ। स्थाने वा, कौन सी जगह पर। केन हेतुना, कौन से कारण से। कुतः संचोदित, किसने प्रेरणा दी। कृष्ण यानी द्वैपायन कृष्ण को। कृतवान संहिता मुनि, कि वो इस वैदिक साहित्य को संकलित करें। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की कहां से प्रेरणा प्राप्त की। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्री वेद व्यास जी की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्री वेद व्यास जी अल्पज्ञ स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है, अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक है। यानी कि क्योंकि अब ये समय था, अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा था, उस समय क्या उन्होंने सारे 17 पुराण लिख लिए थे, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण अभी तक नहीं लिखा था भागवतम, यानी कि क्यों लिखना पड़ा उनको। 17 पुराण लिख लिए थे और इतिहास भी बता दिया था, महाभारत भी उन्होंने रचना कर ली थी, फिर ये श्रीमद् भागवतम महापुराण को रचना करने का क्या उद्देश्य था, क्यों संकलित किया, किस जगह पे किया, किस युग में किया, कैसे प्रारंभ किया और किसकी प्रेरणा से किया, ये सारे प्रश्न पूछे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में जो वो बोलेंगे उससे हमारे जीवन का कनेक्शन है, कि हमें पता चलेगा कि वास्तव में हमें क्या अध्ययन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर अब से प्रसंग शुरू हुआ है, हम इसी तरह से फास्ट अब पढ़ेंगे, क्योंकि अब सिद्धांत जो हमें पढ़ना था ना वो अब भी हम लोगों के है ना इस तरह से कथा में जाएंगे और एज इट इज पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सब कृपया साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।